नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती को हरा भरा रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। इधर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित राजभवन में भी विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बाढ़ग्रस्त सिक्किम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों को निकालने में बाधा, अब तक 63 लोगों को बचाया गया। असम में वर्षा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। NIA द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों में 32 स्थानों पर तलाशी जारी। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा मुद्दों को लेकर 12 देशों को नागरिकों को प्रवेश पर निबंध लगाया। और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम अरियाना सवालेंका का मुकाबला ईगा स्वायातेक से और कोको गौफ का सामना लुईस पॉइसन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। एक रिपोर्ट।
एक ऐसे देश में जहां लगभग 2/3 जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, भारत का भविष्य आकार लेगा उसकी युवा शक्ति से। और आज सरकार शिक्षा और खेलों के माध्यम से भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को उन्नत किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास और 21वीं सदी के कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभारा गया है। खेलो इंडिया अभियान के तहत 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 6,28,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना भारत के शीर्ष एथलीटों को प्रशिक्षण, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ समर्थन प्रदान कर रही है।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लोगों से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी के लिए हरियाली, स्वच्छ और अधिक सरल भविष्य का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की रक्षा पर एक विशेष वीडियो साझा किया। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की।
प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है।
पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये पौधा अरावली श्रृंखला परियोजना के एक हिस्से के रूप में लगाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भी सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाले गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया था। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT परनायक ने आज राजभवन ईटानगर में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में भाग लेते हुए महानीम के पौधे लगाए और नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य के युवाओं, कम्युनिटी लीडर्स, शिक्षकों और समाज के सभी सदस्यों से एक साथ स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त अरुणाचल प्रदेश बनाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार आदतें अपनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन के स्वच्छ तरीके को अपनाने का प्रयास तेज कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ माह के नाम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन लाइफ के लिए इको क्लबों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल सहित एक पेड़ माह के नाम अभियान के दूसरे चरण पर विशेष मॉड्यूल और एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों में 32 स्थानों पर तलाशी ले रही है। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में छापेमारी की जा रही है। आतंकी साजिश के मामले में विभिन्न आतंकवादी गुटों की वित्तीय और पनाह देने जैसी सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मिले सुराग के अनुसार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के साथ कई बैठकों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को मजबूती से सामने रखा है। श्री थरूर ने वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद कहा कि आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार के मुद्दे पर सभी ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया है कि पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं। सिक्किम में चातेन में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम खराब मौसम के कारण रोक दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 109 पर्यटकों में से 63 को चातेन से पाक्योंग हवाई अड्डे तक पहुंचाया है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 19 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने बताया है कि 7 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ ही बारिश की संभावना व्यक्त की। रविवार तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में पूर्वी और मध्य भारत में भी गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कमिंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, अंजाव, चांगलांग और तिराप के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश से आई अचानक बाढ़ से भूस्खलन के कारण कई अंदरूनी गांवों से संपर्क टूट गया है। दिबांग वैली जिले में आथुनली गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां कई घर पानी में बह गए और खेतों में बाढ़ का पानी पूरी तरह भर गया है। आपदा से कई परिवार बेघर और विस्थापित किए गए हैं। दिबांग वैली जिला प्रशासन तलो नदी से उस पार माउली गांव में फंसे लोगों तक ड्रोन के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। महिला सिंगल्स में बेलारूस के शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना सवालेंका का पोलैंड की 5वीं वरीयता प्राप्त ईगा स्वीटेक से मुकाबला होगा, जबकि फ्रांस की गैर वरीयता प्राप्त लुइस बोइसेंस्ट्राम को दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की कोको गॉफ के साथ मुकाबला खेलेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।